सबसे पहले तो ये सच में भगवान की कृपा है, धार में आकर दिव्य देहांश के परिसर में श्वास लेना, और दिव्य देहांश और भी जगह पर हैं भारतवर्ष में, बाहर भी, किंतु ये सच में एक अद्भुत स्थान है। और क्यों माँ शेरविंद ने इस स्थान को चुना है ये हम लोग शायद कभी ना जान पाएं, किंतु इतना जरूर है कि जब उन्होंने चुना है तो इस सुअवसर को हमें अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कृपा है। इसकी हम शायद काफ़ी वर्ष क्या जन्म लगेंगे इस कृपा के अनफोल्ड होने में और इसको समझने में, क्योंकि हम लोग आमतौर पर कृपा से केवल कुछ हमारे दैनिक जीवन की सहायता हो जाए रोजमर्रा के जीवन में उसे समझते हैं। लेकिन एक ऐसी कृपा है जो हमें केवल दिव्य हमें टच करें, सहायता दें, वो तो एक कृपा है, किंतु हमें दिव्य के अनुरूप गढ़ दे, सबसे बड़ी कृपा वो है। और वही कार्य है जो भगवान सिद्ध करने के लिए उन्होंने सृष्टि अपने अंदर से प्रकट की है। उन्होंने सृष्टि इसलिए नहीं प्रकट की कि सदा सदैव मनुष्य मिट्टी में लेटता रहे, एक जगह श्री अरविंद ये कहते हैं, उन्होंने सृष्टि अपने अंदर से इसलिए प्रकट की कि मनुष्य दिव्य बन सके, वही अपने अंदर उसी सर्वसक्षमता और सर्वज्ञता उस प्रेम को धारण कर सके जिसको हम अभी भगवान में पाते हैं, पूजते हैं। ये प्रथम चरण है। और इसी संदर्भ में कल सावित्री के विषय में जब बात हो रही थी तो कोई सब्जेक्ट इस तरह से हम लोगों ने नहीं रखा है, तो बात हो रही थी कि हम लोग क्या किस तरह से करेंगे, तो एक बात हुई थी कि हम लोग सावित्री का एक ओवरव्यू करेंगे, लेकिन ओवरव्यू करेंगे लेकिन मैं आपको लेकिन शब्द के साथ कुछ बता दूं कि जब अभी मेडिटेशन कर रहे थे तो सावित्री की पंक्ति वहां जो लिखी है, ए कैंप ऑफ गॉड इज पिश्ड इन ह्यूमन टाइम, तो मुझे लगा कि इसी पंक्ति को आधार बनाकर हम सावित्री के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि वास्तव में ये बड़ी अद्भुत पंक्ति है, ए कैंप ऑफ गॉड इज पिच्ड इन ह्यूमन टाइम। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान तो धरती पर आते रहे और टच भी लोगों को मिलता रहा है, ग्लिम्स होता रहा है, तो ये तो हमारी परंपरा है, इसमें कोई नई बात क्या है, एक और चीज जुड़ गई। बहुत सारे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, तो अक्सर एक टेंडेंसी होती कि श्री अरविंद उसी संत ऋषियों की लीनियज में एक और संत ऋषि महात्मा है। माताजी एक जगह लिखती हैं कि हर बार जब अवतार पृथ्वी पर आते हैं तो वे इसलिए आते हैं ताकि जड़ तत्व का रूपांतरण हो सके। एक ऐसा रहस्य है जिसका गीता में संकेत मिलता है, लेकिन पूरी तरह उसको श्री कृष्ण इलेबरेट नहीं करते हैं, परंतु बिल्कुल स्पष्ट संकेत है। क्योंकि वास्तव में यदि मनुष्यों को केवल मार्गदर्शन देना हो तो वो तो अनेकों विभूति संत इनके द्वारा मिल सकता है, या थोड़ा बहुत सृष्टि में चेंजेस लाने हो, एक सामाजिक उत्क्रांति लानी हो, बदलाव लाना है, ये भी भगवान की विभूतियां करती हैं और करती रही हैं। यदि मनुष्य को केवल एक सहायता देनी हो, एक संरक्षण देना हो, यहां तक कि उसको ग्लिम्सेस देने हो, अपने अपना दर्शन देना हो, तो उसके लिए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान सक्षम है ये सब करने के लिए बिना शरीर को धारण किए, लेकिन भौतिक शरीर वे धारण इसलिए करते हैं ताकि दिव्य को जड़ से जोड़ सकें। और इसी चीज को बड़े सुंदर ढंग से इस पंक्ति में उद्धृत किया गया है, ए कैंप ऑफ गॉड इज पिच्ड इन ह्यूमन टाइम। भगवान आते हैं, पहले भी आए हैं, सृष्टि को टच किया उन्होंने और चले जाते हैं, मनुष्य के अंतर में आते हैं। बहुत तरह से लोगों को भगवान का स्पर्श मिलता है लेकिन ठहर नहीं पाते, ठीक वैसे जैसे रोज सुबह प्रकाश आता है तो वो भी उषा काल एक प्रकार से भगवान का आह्वान है हमारे जीवन में, एक नए ढंग से हमें इस दिन को प्रारंभ करने का अवसर मिलता है। सच पूछा जाए तो हमारा एक नया जन्म होता है, हम फिर से प्रत्येक दिन एक नया रिजोल्यूशन लेकर जीवन जी सकते हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये प्रकाश टिकता नहीं, चला जाता है, फिर से इसको रात्रि मानो निगल लेती है। ये टच है, कैंप नहीं है। और जब कहा जाता है कैंप ऑफ गॉड इज पिस्ट इन ह्यूमन टाइम, यानी भगवान आए और उन्हें जाना ना पड़े, किसी ना किसी रूप में वो यहां जड़ तत्व में रह जाएं। और तब श्री अरविंद के दिव्य देहांश की बात और भी अधिक मायने रखती है। श्री अरविंद ने दिव्य देहांश के द्वारा इस धरती में अपने टच को समाहित कर दिया है और उससे वो प्रवाहित कर रहे हैं। माताजी ने योगा ऑफ सेल्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, माताजी एक शब्द यूज करती संक्रमण, संक्रमण के द्वारा जड़ तत्व में दिव्यत्व को ला रहे हैं। और इसी सत्य का श्री अरविंद और माताजी के इस महायोग यात्रा का प्रत्यक्ष प्रमाण सावित्री है। श्री अरविंद ने बहुत कुछ लिखा है, हम सब जानते हैं। अभी अब जो नया वॉल्यूम सारे 35 वॉल्यूम में आएंगी उनकी लिखनी, और अभी भी और बहुत कुछ है जो नहीं निकला है, पत्रावली वगैरह। तो इसमें सावित्री का विशेष महत्व क्यों? पहली चीज तो जब भी कोई लिखनी होती है या कोई बात कही जाती है तो उसका एक कंटेक्स्ट होता है। जैसे श्री अरविंद की पत्रावली है, पत्रावली साधकों के प्रश्न के उत्तर में दी गई है, तो उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है कि वो साधक ने प्रश्न किया, उसकी चेतना के अनुरूप श्री अरविंद ने उत्तर दिया। और कई बार हम उसको मिस अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो उत्तर किसी और के लिए है, कोई आवश्यक नहीं कि वो हम पर अप्लाई हो। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि श्री अरविंद ने 1914 से 1920 के बीच में योग से संबंधित और धरती से संबंधित, भगवान की दृष्टि से जीवन दर्शन को और योग यात्रा को उन्होंने प्रकट किया। किसके लिए प्रकट किया? मनुष्यों के लिए प्रकट किया, ताकि हम जान सकें कि आगत काल में क्या होने वाला है और हम उसमें किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। इसलिए, क्योंकि नहीं तो हम लोग राह भट के मनुष्य की तरह हैं, रोज जीवन जी रहे हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक जीवन में क्या होगा, बच्चे के जीवन में क्या होगा, इससे आगे हम देख नहीं पाते। तो उन्होंने एक ऐसा दर्शन प्रकट किया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या प्लानिंग की है, तुम तो प्लानिंग कर रहे हो, ये छोटी छोटी प्लानिंग कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या देखा है, इस ड्रीम ऑफ द डिवाइन, भगवान का स्वप्न, और तुम इस प्लानिंग से जुड़ना चाहोगे तो जुड़ सकते हो। ये एक महाअभियान है, ये केवल इसका अभियान नहीं है कि हमारे दैनिक जीवन में छोटी मोटी बातें, वो तो होंगी और उसकी रक्षा माँ करेंगी, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। तो वे जो पुस्तकें हैं जिसको हम शेयरविंद के मेजर वर्क्स कहते हैं, उसमें शेयरविंद ने धरती के आगे एक लक्ष्य, और वो धरती का लक्ष्य किसने सुनियोजित किया है? स्वयं भगवान ने सुनियोजित किया है। और उस पर चलने के लिए जो कुछ साधन सामग्री है वो सब हमारे अंदर मौजूद है, और उस साधन सामग्री को जब हम सही उपयोग करते हैं तो उसी को साधना कह दिया जाता है। वो सब साधन हमारे अंदर मौजूद हैं, चाहे वो विचार की शक्ति हो, संकल्प की शक्ति हो, हृदय की शक्ति हो, शरीर तक, ये सब भगवान की ये साधन है। लेकिन आमतौर पर हम इस साधन को अपने ही अहंकार की और अहंकार से जनित व्यक्ति या वस्तुओं की सेवा में लगाते हैं, किंतु ये साधन किसी और प्रयोजन से है। और यहां तक कि कई बार मोक्ष ये भी एक प्रकार का एक अहंकार है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मुक्त हो जाऊंगा, ये साधन का उपयोग है साधन को नष्ट करने के लिए। किंतु ये साधन भगवान ने दिए, प्रकृति ने जुटा करके दिए मनुष्य के अंदर, किस प्रयोजन से दिए हैं? कुछ आई थिंक कल रात को ये बात हो रही थी कि जब पिछली बार हम लोगों ने यहां कुछ ईंट रखे थे, बात हो रही, अब देखिए उन ईंटों से क्या खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे करके और बहुत कुछ यहां पर आएगा जो भगवान ने स्वप्न देखा है। कुछ लोग ईंट ले आते हैं, कुछ मिट्टी ले आते हैं, सब अपना अपना योगदान करते हैं, लेकिन ये सब साधन है। लेकिन उस साधन के द्वारा उनको जुटा करके क्या बनाना है वो एक अद्भुत कार्य है, और वह कार्य है कैंप ऑफ गॉड। और ये कैंप ऑफ गॉड दो स्तर पे बनता है, बाहर, बाहर हम लोगों ने ये आप सबने इतने सुंदर ढंग से बनाया है और रख रहे हैं, बनाना काफी नहीं है, दिव्य देहांश की स्थापना एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसको रखा जा रहा है। और उसी के साथ साथ एक दूसरा काम हो रहा है, कैंप ऑफ गॉड अंदर बनना। माताजी से एक बार, माताजी ने एक बार द्युमन भाई को कहा, द्युमन भाई कहते हैं कि मैं, मेरे से साधना होती नहीं, ये सब बहुत, ये आसान नहीं है, बड़ी कठिन बात है। तो माताजी कहती है तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगी। तो जब हम लोग ये कैंप ऑफ गॉड बनाने में सहयोग देते हैं, जिस भी प्रकार से, कोई पत्थर उठाकर रख देता है, बस इतना ही किया, जैसे गिलहरी ने रेत में लोट कर डाल दी, उतनी रेत की समुद्र भर जाएगा। तो जब हम इतना भी काम करते हैं तो हमारे अंदर उसी के अनुरूप एक सच्चा कैंप ऑफ गॉड बनना प्रारंभ हो जाता है। हम तो बाहर से काम कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं, कई बार लोग क्या होगा उसमें, ये काम करने की ये थोड़ी साधना है, हमें मालूम ही नहीं कितनी बड़ी साधना है। हम ये काम कर रहे हैं कि एक भूमि पर पूरी तरह मां श्री अरविंद यहां पर आकर के रहेंगे, उसके उनके लिए हम घर बना रहे हैं। और जब हम ये करते हैं तो भगवान हमारे अंदर अपनी उपस्थिति के लिए घर बनाते हैं। और ये कार्य कहां से प्रारंभ होता है, वही हम सावित्री में पाएंगे। सावित्री श्री अरविंद की एक ऐसी रचना है जो बड़ी अद्भुत है, कई सेंस में बड़ी अद्भुत है। एक तो ये कि जैसा, जैसी बात हो रही थी कि आर्य में जो लेख लिखे उन्होंने मनुष्य को संबोधित किया, एक प्रकार से इनडायरेक्टली संबोधित किया कि भाई तुम्हें सिंथेसिस ऑफ योग है, जो चलना चाहते हैं कैसे चलें, या दिव्य जीवन है, डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ, डिवाइन किनके लिए, जो लोग बहुत अधिक स्वयं कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स, जो जानना चाहते हैं कि ये सब, बहुत सारे विचारधाराएं, बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे जीवन दर्शन हैं, तो श्री अरविंद उनको उनके परे एक नया दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ह्यूमन साइकिल है, ये सब जो उन्होंने लिखा, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, ये सब एक प्रकार से उन्होंने अज्ञान में जो मनुष्य है उसको एड्रेस करके लिखा, तो इनका महत्व तो बहुत है। किंतु सावित्री जो उन्होंने लिखी है ये अद्भुत है, क्योंकि वह इन द रियल सेंस स्वांत सुखाए, इन द रियल सेंस, उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिखा, किसी ग्रुप के लिए नहीं लिखा, किसी मनुष्य को संबोधित नहीं किया। श्री अरविंद कहते हैं आई यूज सावित्री एज ए मीन्स ऑफ एसेंशन, स्वयं वो सावित्री के द्वारा सावित्री प्रकट कर रहे थे, और जैसे जैसे प्रकट हो रही थी, उनके उनके अवतार का एक बाहरी यंत्र भी होता है, उस यंत्र के द्वारा वैसे वैसे श्री अरविंद की कहते हैं एसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसीलिए हम देखते हैं कि सावित्री उनकी सबसे लंबी रचना है और सबसे अधिक समय प्रारंभ इसका बड़ौदा में होता है, जब श्री अरविंद अर्थ एंड बियॉन्ड के नाम से एक लिखते हैं कुछ, लेकिन कहा जाता है कि वो कहीं पर लुप्त हो गया, आने जाने में कहीं लुप्त हो गया, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया होगा, जो भी हुआ होगा लुप्त हो गया। फिर 1916 में प्रारंभ करते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर 1927 से सीरियसली उस पर काम करते हैं, और ये काम चलता रहता है 1950 तक, यहां तक कि जब बाकी सब पुस्तकें जैसे सिंथेसिस ऑफ योगा इत्यादि श्री अरविंद उस पर वापस लौट कर रिवाइज नहीं करना चाह रहे थे, किंतु सावित्री के मामले में श्री अरविंद उसको रिवाइज करते हैं अंत तक। निरोद्वरण की एक बड़ी सुंदर पहला इंडिकेशन कि श्री अरविंद ने पार्थिव शरीर, पार्थिव जगत के पीछे जाने का निर्णय लिया है, ये इंडिकेशन उनको मिलता है जब श्री अरविंद मानो शीघ्रता से सावित्री समाप्त करना चाह रहे हैं। निरोद्वरण लिखते हैं कि ये एक इंडिकेशन था, कि क्योंकि श्री अरविंद ने कभी जीवन में इस तरह की शीघ्रता नहीं दर्शाई थी, तो कहते हैं अच्छा ये सब कुछ रिवाइज हो गया, हाँ बुक ऑफ फेट रिवाइज हो गई, हाँ अब क्या बचा है, तो निरोद्वरण कहते हैं कि बाकी सब हो गया, बुक ऑफ डेथ बची है। श्री अरविंद कहते हैं ओह वी शैल सी दैट लेटर, मानो अब उनका जो एक कार्य था वो समाप्त हो गया। और ये इतना आवश्यक गिफ्ट, ये उनका स्वांते सुखाए का एक गिफ्ट है, और इसलिए सावित्री के अंदर वह सब कुछ है जो हमको चेतना की उच्चतम सीढ़ी तक, माताजी कहती योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट द हेल्प ऑफ ए गुरु और लिविंग गाइड, ये उसके अंदर शक्ति उन्होंने डाल दी है। क्योंकि ये उन्होंने किसी एक ग्रुप या मनुष्य उसके लिए नहीं सावित्री प्रकट की है, सावित्री उन्होंने स्वयं अपने अंदर से अपने ही आनंद के लिए प्रकट की है। और ये एक अद्भुत इसीलिए कृति है, जो इसमें डूबेगा वो भगवान के आनंद में डुबकी लगाएगा। और आनंद क्या करता है, हमें शुद्ध परिष्कृत सब कुछ जो अंदर में विरोधात्मक चीजें हैं उनको हटा देता है, स्वतः ही हटा देता है, उसमें कुछ और आवश्यक ही नहीं है, वो अपने आप में उन्हीं की चेतना है जो उन्होंने पुस्तक के रूप में प्रकट की है। तो इसीलिए, और ये देखिए हमारे ट्रेडिशन में ये चीज रही है कि एक और वेद उपनिषद इत्यादि हैं जिसमें एक मार्ग दिखाया गया है, हम उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत की परंपरा में एक और चीज जोड़ दी गई, और वो कि रामायण भागवत इनके पाठ मात्र से व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है। अब कोई कहे कि इनके पढ़ने मात्र से परिवर्तन क्यों आता है, इसीलिए आता है क्योंकि ये पुस्तकें लिखी ही इस प्रकार से गई हैं। वो इस तरह से नहीं लिखी गई कि हम उसको पढ़ें, उसमें एक मार्गदर्शन, उसका पालन करें, वो करें तो बहुत अच्छी बात है। भागवत अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तो बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनको हम कैसे उसको अप्लाई कैसे करें, ये नहीं है। श्री कृष्ण की कहानी है वो, उसमें आनंद है, जिसने लिखा उसने बस श्री कृष्ण को देखा, उस आनंद में नहाया और उस आनंद को प्रकट किया। व्यास ऋषि की कथा आती है ना कि वो सब कुछ लिखने के बाद भी पीड़ित थे, कहीं ना कहीं मानो कोई चीज अधूरी है जीवन में। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपके अंदर ये जो अधूरापन लग रहा है, सब कुछ आपने लिखा है लेकिन अभी तक आपने भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया है, वो भी तो आपने देखी है, उससे बड़ी कोई चीज है क्या? तो वो कहते हैं हाँ, ये तो सच है कि मैंने वो नहीं वर्णन किया है, और भगवान की लीला से अद्भुत और कुछ है ही नहीं। सारे योग शास्त्र साधन एक तरफ और भगवान की लीला का आनंद एक तरफ। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत अपने अंदर से प्रकट की, अद्भुत ग्रंथ है, माताजी श्री अरविंद दोनों ने कहा है इसके बारे में। और सावित्री उसी प्रकार से भगवान की इस शरीर में लीला का वर्णन है, ये मां श्री अरविंद की कहानी है। अश्वपति का योग श्री अरविंद का योग है और माताजी का योग सावित्री का योग है। तो ये उनकी ही लीला का, किसी व्यास के द्वारा नहीं, उन्हीं के द्वारा वर्णन है। आप कल्पना कर सकते हैं हम कि ये किस कोटि की पुस्तक है, इसको हम किसी भी स्लॉट में नहीं डाल सकते, इसके पढ़ने मात्र से आनंद होता है। और इसका एक उद्देश्य अब हम मानवीय भाषा में, ए कैंप ऑफ गॉड इज पिच्ड इन ह्यूमन टाइम, धरती के ऊपर जैसे आज हम लोगों ने सरेंडर का पौधा आरोपित किया, वैसे ही दिव्य चेतना के पौधे को धरती में आरोपित करना। इस तरह नहीं कि टच करके चला जाए, परंतु वो वहां यहां रहे, स्थायी रूप से रहे। और ये काम भगवान कहां प्रारंभ करते हैं, भगवान अपना कार्य प्रारंभ वहां करते हैं जहां घना अंधकार है, वहां प्रकाश लाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो ये हम सब ने इस चीज को देखा भी होगा, शायद यहां के कार्य में भी देखा होगा, सब जगह कैसी भी जमीन हो कहां से, और फिर वो वहां से साधन जुटा करके प्रारंभ करेंगे काम हम सबके अंदर। तो सावित्री का प्रारंभ भी ऐसे ही होता है, सिंबल डॉन से। प्रारंभ कहां से होता है भगवान का काम, ऐसे नहीं कि कई बार लोग कहते हैं हम तो ऐसे हैं, हमें नहीं समझ आता, सावित्री नहीं समझ आती, श्री अरविंद बहुत योग उनका बड़ा कठिन है, कैसे करें। तो श्री अरविंद ने ये बीड़ा उठाया है कि वे योग करेंगे हमारे अंदर, हमारी स्वीकृति चाहिए। घने से घना अंधकार वहां वे प्रकाश ला सकते हैं, लेकिन हमारी स्वीकृति चाहिए। तो सावित्री भी ऐसे ही प्रारंभ होती है, इट वॉज द अवर बिफोर द गॉड्स अवेक, है ना। हम लोगों के जीवन ऐसे ही चल रहा था मां श्री अरविंद का टच पाने के पहले, कम से कम मैं अपने जीवन के बारे में तो बता सकता हूं। वही अज्ञान, वही चीजें, वही लक्ष्य, डॉक्टर बनो, विवाह, बच्चे, यही तो जीवन में, और कुछ तो वो क्या जीवन है। इट वॉज द अवर बिफोर द गॉड्स अवेक, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कथा सुन ली, पुस्तकें पढ़ ली, ये हमारे जीवन की का अंधकार है। और सृष्टि भी ऐसे ही प्रारंभ होती है, इट वॉज द अवर बिफोर द गॉड्स अवेक। ये कौन है ये गॉड्स, यही हमारे अंदर अभिप्सा की अग्नि जलाते हैं, यही हमारे अंदर विशालता लाते हैं, यही हमें गतिशील करते हैं साधना की ओर, यही तो है अग्नि वायु मित्र जो हमारे अंदर दिव्य प्रेम को भरते हैं इंद्र इत्यादि। Across the path of the divine event, divine event क्या है? भगवान को इस भूमि पर, श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, माता जी को लिखे पत्र में है, Heavens we have conquered, but not yet the earth. वामन अवतार की कहानी है ना, Heavens we have conquered. स्वर्ग हमने अधिकृत कर लिया है, सारे देवता मां को पहचान कर उनके चरणों में है, किंतु पृथ्वी नहीं, पृथ्वी में ना सरेंडर है ना प्रकाश है, टच करके चला जाता है, नॉट येट द अर्थ। ये एक डिवाइन इवेंट है स्वर्ग और पृथ्वी का जुड़ना, लेकिन उस मार्ग में कौन खड़ा है? द ह्यूज फोरबोडिंग माइंड ऑफ नाइट अलोन इन हर अनलिट टेम्पल ऑफ इटर्निटी ले स्ट्रेस्ड इमोबाइल अपॉन साइलेंस मार्च। एक क्षण को कल्पना कीजिए इस भूमि के बारे में, 100 वर्ष पूर्व रात होती होगी, ये भूमि अंधकार में डूबती होगी, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई अभिप्सा जागती होगी, लेकिन समय नहीं, महसूस हम नहीं कर सकते। कल अशोक जी बता रहे थे, आते हुए इस भूमि को देखकर बड़ा अच्छा लगता था, है ना, ऐसी कुछ था। वो क्या है? वो चैत्य ने कहीं भूमि की अभिप्सा को महसूस किया, ये एक पूर्वाभास है। लेकिन हम लोग कब करते हैं? जब इवेंट काफी नजदीक होता है। और एक कल्पना कीजिए, जब पृथ्वी बनी होगी आज से 15 बिलियन वर्ष पहले या 5 बिलियन वर्ष पहले, उस समय यही भूमि, घना अंधकार होगा, उबड़ खाबड़ जंगल, जीव जंतु। भगवान ने तब कार्य शुरू किया होगा यहां, हम लोग तो अब जुड़े हैं। रामायण में बंदर भालू कब जुड़ते हैं? लास्ट के कुछ समय में। लेकिन रामायण कब शुरू होती है? रामायण शुरू होती है जब रावण का जन्म होता है, उसके भी पहले। तब से ये निश्चित हो गया है कि राम आएंगे, धरती पर ये लीला होगी, ये सब होगा, रावण का अंत होगा। बंदर भालू को कुछ नहीं पता है, ऐसी ऐसी घटनाएं जुड़ती जाती हैं एक के बाद एक, लास्ट में अरे अरे हमें राम जी के लिए युद्ध करना है, चलो चलो चलो। सब निश्चित हो चुका है, विक्ट्री निश्चित हो चुकी है। सौभाग्य उनका कि लास्ट में के जो भी 15-20 दिन एक महीने युद्ध के लिए वो साथ में हो जाते हैं। हम लोग का ऐसे ही कुछ काम है। इस भूमि को कब देखा होगा उन्होंने, कौन जानता है? और देखकर उन्होंने निश्चित किया होगा, यहां पर एक दिन जब घने अंधकार में डूबी होगी, अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट द ह्यूज फोरबोडिंग माइंड ऑफ नाइट अलोन इन हर अनलिट टेम्पल ऑफ इटर्निटी। मंदिर है किंतु प्रकाश नहीं है, दिया नहीं जला है। हम लोग कहते हैं ना, ये देह भगवान की मंदिर है, कैंप ऑफ गॉड है, परंतु कैसा मंदिर है? जहां ना दिया जलाए ना भगवान की सेवा होती है, खंडर स्वरूप मंदिर है। है मंदिर, लेकिन भगवान का यहां तिरस्कार होता है। सेवा होती है, लेकिन किस तरह की सेवा होती है? आपने देखा होगा कुछ मंदिरों में लोग शराब चढ़ाते हैं, तो इस मंदिर में हम लोग क्या चढ़ाते हैं? रोज कामनाएं वासनाओं का विष चढ़ाते हैं। जब ये विष चढ़ाते हैं तो कौन आता है? शिवजी अपने गले के सर्प को भेजते हैं, तुम ही इसको ग्रहण करो, क्योंकि साक्षात शिव का कैसे दर्शन होगा? हम लोग तो रोज ऐसा चढ़ावा दे रहे हैं मंदिर में आके। कहीं कोई एक शुद्ध भावना हृदय में जागती है और वो कहती है, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा सानिध्य चाहिए। तब देखिए उसी मंदिर के अंदर जहां पत्थर की मूर्ति थी, वहीं पर साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। तो ये पहला वर्णन उस समय का है जब अनलिट टेम्पल ऑफ इटर्निटी, ये सृष्टि भगवान का मंदिर है, ये पूरी भूमि भगवान की है और होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में बाहर इस समय वो नहीं है, क्योंकि सब भूमि पर मनुष्यों ने कब्जा किया हुआ है। वो उसको अपने अहंकार के अनुसार चलाते, ये मेरा घर है, मेरे अनुसार चीजें होंगी, जैसा मैं चाहूंगा वैसी होंगी। कभी ये सोच के देखें कि भगवान का घर है, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा मैं भी रहूंगा, सेवक की तरह, और बाकी सब भी। भरत जी ऐसे ही राज्य चलाते थे ना, खड़ाओं को रख करके। ऑलमोस्ट वन फेल्ट ओपेक इम्पेनिट्रेबल इन द सॉम्बर सिंबल ऑफ अर आईलेस म्यूज द एबिज्म ऑफ द अनबॉडीड इन्फिनिट ए फैदमलेस जीरो ऑक्यूपाइड द वर्ल्ड अनबॉडीड इन्फिनिट। ये तो शेरविंद उसके पहले की भी सृष्टि निश्चेतना के अनबॉडीड, देह भी नहीं, जड़ तत्व भी नहीं बना है, तब की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है, केवल निश्चेतना निश्चेतना निश्चेतना, ऐसा अंधकार जिसमें अंधकार स्वयं डूब जाए, ऐसा अंधकार। ऋग्वेद में सृष्टि के प्रारंभ की बात आती है, डार्कनेस कवर्ड विद डार्कनेस, अंधकार अंधकार से ढका हुआ है, वह निश्चेतना। और भगवान जाके देखते हैं, कहते हैं हाँ ये अच्छी जगह है, यहां मैं अपना घर बनाऊंगा। ये भगवान ही सोच सकते हैं, मनुष्य को बनी बनाई चीजें चाहिए, ये अंधकार ये अच्छा है, मेरा प्रकाश जब यहां आएगा तो धीरे धीरे फैलेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। अब कुछ पंक्तियां नीचे, एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स, एक ही लाइन काफी है जीवन को सुधारने के लिए। प्रारंभ हर चीज का अंधकार से होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसका अंत भी अंधकार है। सबके लिए आशा है, क्यों, कितना ही घना अंधकार क्यों ना हो, वो केवल एक प्रारंभ है। श्री अरविंद सावित्री में अन्यत्र लिखते हैं, ऑल अवर अर्थ starts from the mud and climbs to the sky. पौधा कहां से शुरू हो रहा है, नीचे अंधकार में, लेकिन कहां पहुंचेगा, अभी उसमें बहुत सी संभावनाएं हैं, आकाश की ओर उठेगा, प्रकाश को सोखेगा और हम सबके प्रेम से सिंचित होगा और तब उसके अंदर गुलाब खिलेगा। अगर किसी को ना मालूम हो तो कहेगा ये क्या क्या कुछ नहीं, इसके अंदर है क्या, इसको क्यों लगाया गया है। तो उस प्रकार से एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स ए म्यूट फीचरलेस सेम्बलेंस ऑफ द अननोन रिपीटिंग फॉर एवर द अनकॉन्शियस एक्ट प्रोलॉन्गिंग फॉर एवर द अनसीइंग विल क्रेडिल द कॉस्मिक ड्राउज ऑफ इग्नोरेंट फोर्स हुज मूव्ड क्रिएटिव स्लंबर किंडल्स द सन्स। हम लोग ऐसे ही हैं, रिपीटिंग फॉर एवर द अनकॉन्शियस एक्ट, जन्म लिया, बड़े हुए, जॉब किया, विवाह किया, बच्चे हुए, उसके बाद बच्चों की शादी, उसके बाद उनके बच्चे, अनकॉन्शियस एक्ट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यही चलता रहता है। घर बना लिया, साथ में एक साइड एम जुड़ जाते हैं, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, ये कोई लक्ष्य है मनुष्य के लिए? लगभग यही चीजें पशु भी करता है, खाली वो इस पर फिलॉसफी नहीं लिखता, लगभग यही चीजें, हाँ बस वही, उस पर कब्जा नहीं करता, पट्टा ट्रांसफर नहीं करता कि ये मेरा घर है, पर हाँ उस समय वो रहता है, बोध उसको भी रहता है मेरा घर है, उसके आप घर के दायरे में नहीं जा सकते, ये मेरे हैं, ये बोध रहता है, हाथी सिंह इनमें ये बोध रहता है, लेकिन उसके आगे यही मनुष्य है क्या, रिपीटिंग फॉर एवर द अनकॉन्शियस एक्ट, और ऐसे ही जीवन चलता रहता है चलता रहता है। श्री अरविंद इसकी तुलना करें, अर्थ जो चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, ऋतुएं परिवर्तित होती जा रही हैं, बार बार वही चीज चक्कर लगा रही है, ना जाने कितने कितनी परिक्रमा वो कर चुकी है, लेकिन वो वास्तव में क्या चाहती है, वो चाहती है सूर्य मुझे टच करे, और हर परिक्रमा के बाद सूर्य टच करता है, प्रकाश बढ़ता रहता है, थोड़ी देर बाद पृथ्वी कहती नहीं बहुत इंटेंस है, मैं सहन नहीं कर सकती, घूम जाती है, रात हो जाती है, सूर्य नहीं कहीं जाता, पर हम उसको सहन नहीं कर पाते। तो इस सब का वर्णन है। और फिर प्रत्युत्तर कि एक लंबे समय तक अंधकार में अभीप्सा चलती है। अक्सर लोग कहते हैं हम याद तो कर रहे हैं, माता जी का नाम ले रहे हैं, पर कुछ होता नहीं। माता जी इसको बताती हैं, एक शिकारी रात को अंधेरे में तीर चलाता रहा। तो अंधेरे में क्या होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, तीर चलाता रहा, ऐसे ही चलाता रहा, थक हार के वो लेट गया, नींद लग गई। जब आंख खुली तो देखा बहुत सारे शिकार चारों तरफ उसके गिरे पड़े थे। तो यहां पर अर्थ ऐसा करती रहती है, बरसों करती है, 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी ने इस प्रकार परिक्रमा काटी है, तब मनुष्य आया है। कल्पना कीजिए 5 बिलियन साल, और उसके मुकाबले मनुष्य शायद 1,50,000 बच्चा आया अभी। और हम लोग कितने अधीर होते हैं, पृथ्वी की से सीखना चाहिए धैर्य, क्योंकि हम लोग पृथ्वी की भी संतानें हैं, एक और सुप्रीम मदर की संतान है, और हमारा देह पृथ्वी से बना है। तो पृथ्वी के तत्व, पृथ्वी में देखिए कैसा धैर्य है। और फिर क्या होता है, कितनी बार वो आती है, कुछ खिलता है, फिर प्रलय होती है, फिर आता है, फिर नष्ट होता है अंत में। लेकिन इस सब के साथ उसके अंदर एक चीज डेवलप होती है, एन अनशेप्ड कॉन्शियसनेस, डिजायर्ड लाइट। जानती नहीं प्रकाश क्या है, लेकिन डिजायर्ड लाइट। और फिर जो होता है, बहुत सुंदर वर्णन है, प्रथम अवतार का वर्णन है। ये जो पंक्तियां उसको माता जी कहती प्रथम अवतार। इस अभीप्सा के प्रत्युत्तर में जो अवतरण होता है, इन सेंसिबली समवेयर ए ब्रीच बिगैन। इस अभीप्सा, इवन मैकेनिकल, कई बार लोग कहते हैं मैकेनिकल है, मैकेनिकल नाम जब करें जरूर करिए, हमको लग रहा है मैकेनिकल है, उसका भी एक असर होता है। तो करते करते कहीं पर कोई चीज खुल जाती है, कहां खुलेगी नहीं मालूम। समवेयर, देखिए लाइन देखिए, इनसेंसिबली समवेयर ए ब्रीच बिगैन, कुछ खुला। और जो खुलता उससे क्या होता है, ए लॉन्ग लोन लाइन ऑफ हेजिटेटिंग यू लाइक ए वेग स्माइल टेम्प्टिंग ए डेजर्ट हार्ट ट्रबल द फार रिम ऑफ लाइफ ऑब्स्क्योर स्लीप। सुबह सुधीर भाई ने बताया मुझे, इधर देखिए चंद्रमा निकला है ना, अभी थोड़ी दूर देर में उधर से सूर्य निकलेगा, और फिर एक समय आएगा जब दोनों साथ में होंगे। अच्छा अब मुझे समझ नहीं आ रहा है सूर्य किधर से निकलेगा, अब ये तो मालूम है पूरब से निकलता है, लेकिन प्रकाश आ रहा है, सूर्य तो काफी बाद में निकलेगा। अब वो प्रकाश का जो पहला क्षण है, बताइए प्रकाश का पहला क्षण किधर से आता है, ट्राई टू फील इट, वो कहां से आता है वी डोंट नो, पर आता है, टच करता है, और वो धीरे धीरे आकर के ट्रबल्ड द फार रिम। ट्रबल, कई बार हम लोग को लगता है ये सब नहीं जानते, तो हम लोगों को नहीं पर मनुष्य को, अरे ये सब क्यों, ये सब में पढ़ना, जीवन बड़ा अच्छा है जैसे चल रहा है। भगवान का स्पर्श ट्रबल देता है। रामायण में इसकी बड़ी सुंदर कहानी है, जब तक श्री राम नहीं आए थे तब तक अपना सुग्रीव बाली इन सब का जीवन चल रहा था, जैसे जैसे एक का राज उधर था, एक जंगल में थे, उन्होंने जंगल में ही अपना राज बना लिया था। फिर राम जी से उनकी संधि होती है, बाली की मृत्यु होती है, उसके बाद सुग्रीव भूल जाता है अपना सारा सारा रिजोल्यूशन, और वो अपना राज्य मिल गया उसमें आनंद मगन। तो लक्ष्मण जाके क्या करते हैं, ट्रबल्ड, वही चीज है, सुग्रीव तो सो रहा है, एक काम करना है, ये तो पहला टच मिला है तुझे, उससे ही तू इतना भूल गया, सब विस्मृत हो गया। ट्रबल द फार रिम, भगवान का जब स्पर्श होता है तब एक नया श्रम प्रारंभ होता है। अब तक जो श्रम कर रहे थे उसे एकदम अलग, एकदम नया, अभूतपूर्व, कहीं अधिक श्रम है। लोग आश्रम में जाकर के, किसी ने पूछा, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे आर्जव, बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते थे, किसी ने कहा तुम इतना इंग्लैंड ये सब वैभव छोड़ के यहां कहां भारतवर्ष के गांव में आकर के रह रहे हो, क्या करते हो तुम? तो उन्होंने कहा क्या क्या बताऊं क्या करता हूं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हो? नहीं, क्या करते हो? तो चुप रहे। फिर कहते हैं यदि मैं तुम्हें यह बताऊं कि मैं रोज अपने अहंकार से लड़ता हूं तो समझ पाओगे? तो चुप हो गया, कहा नहीं नहीं ये नहीं समझ आता। लेकिन ट्रबल होती है ना अहंकार से लड़ना, पुराने जीवन में क्या था, ये नहीं करना पड़ता था, अपना जैसा चल रहा है चलने दो, बस दाल रोटी कमानी है, ये है अहंकार का ही राज्य है, मेरी बात नहीं सुनी, गुस्सा हो गए। अब यहां पूरा खेल उल्टा हो गया, अपने ही अंदर युद्ध शुरू हो गया। तो इसको शेरविन कहते हैं ट्रबल्ड, द फार रिम ऑफ लाइफ्स ऑब्सक्योर स्लीप अराइव्ड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ बाउंडलेसनेस एन आई ऑफ डेटी पियर्ड थ्रू द डम डीप्स ए स्काउट इन ए रिकनाइसा फ्रॉम द सन। इट्स मैसेज crept through the reluctant hush, calling the adventure of consciousness and joy. फिर से एक नया एडवेंचर। ये सब जो एडवेंचर हम लोग करते हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ना, ये चढ़ना, उसके सामने कुछ नहीं है। अंदर के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, रूट भी नहीं मालूम क्या होगा, बहुत सारे एवलैंक है, बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, इन सब से मुलाकात होगी। ये एक इनर एडवेंचर है, चेतना का एडवेंचर। साहस चाहिए उसमें, श्रद्धा चाहिए, लेकिन साथ ही क्या है उसमें, जॉय है। एक जीवन है जो समतल भूमि पर रोज, वो जीवन है, एक जीवन है आंतरिक विकास का जीवन। तो उसमें श्रम है लेकिन साथ में आनंद है, क्योंकि श्रम में ही आनंद है। वास्तव में तो सत्य ये है, श्रम में ही आनंद है। श्रमहीन व्यक्ति सोचता है कि वो मजा ले रहा है, मजा नहीं ले रहा है, वो प्रति क्षण एक महाअंधकार में विलुप्त होता जा रहा है। और वो इस तरह का मजा है जो बिल्कुल निश्चेतना का, जब उसको ये भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये एक नया एडवेंचर। और इसमें बस लास्ट पार्ट हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे, फिर दूसरे कैंटोस पे आएंगे। फिर से ये प्रयास, हम लोग सोचते हैं कि इस जन्म में हम लोग जुड़े हैं माँ श्री अरविंद से। माता जी से किसी ने एक बार पूछा कि माँ क्या हम लोग पूर्व जन्मों में भी मिले थे? माँ कहती यस वी हैव ऑल मेट इन प्रीवियस लाइव्स। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं गीता देते समय, अर्जुन तू सोच रहा है पहली बार मिल रहा हूं, ये ठीक है तेरी समस्या है, पर हम लोग कई जन्मों में हमने साथ मिलकर यह कार्य किया है। वी हैव ऑल मेट इन प्रीवियस लाइव्स, वी हैव शेयर्ड द लेबर एंड वी शैल शेयर द जॉय ऑफ द विक्ट्री। हाँ, चारुदत्त की कथा है कि श्री अरविंद कहते हैं कि कई जन्मों से ये तो युद्ध, युगों के युद्ध में ये मेरे मित्र रहे हैं, और चारुचंद दत्त कुछ नहीं जानते। कहते अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, तो ये हम नहीं जानते, भगवान जानते। नहीं तो सोचिए आप कैसे धार में आना उन्होंने चाहा, धार में क्या सुविधा है, कहीं और जा सकते थे भगवान, धार में भी किन लोगों के बीच, ऐसे नहीं कि हम में से कोई भी कोई कुबेरपति है, सब साधारण मनुष्य है, किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई ये भी नहीं कि हम लोग बड़े पंडित हैं, बड़े कोई नामी गिरामी, कुछ भी नहीं, सब हम सब साधारण व्यक्ति। अब भगवान पकड़ करके, हमें बंदरों को पकड़ करके नचाना शुरू कर दिया मदारी की तरह, कि कहीं यहां नहीं आए तो बस मन जैसे कुछ मिसिंग है, मिसिंग है। तो ये ऐसा कैसे संभव होता है? ये संभव इसलिए होता है क्योंकि ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। क्यों बनेगा ये मंदिर हमारे अंदर, अक्सर लोग कहते हैं कि कर रहे हैं लेकिन मालूम नहीं ये होगा कि नहीं होगा, बहुत कठिन योग है, तो उस समय क्या याद रखना चाहिए? मनुष्य के लिए कठिन है, भगवान के लिए कुछ भी नहीं कठिन है। अगर कोई बंदरों से पूछता रावण से जीत पाओगे, तो बंदर क्या कहता, पता नहीं हम तो राम भरोसे जा रहे हैं, राक्षस हैं बड़े बड़े, तुम कहां, थोड़ी बहुत मंकी ट्रिक्स आती है, पेड़ वेड़ पे गए वो पेड़ के साथ खा लेंगे तुमको, यही बोलते ना, मूर्खता कर रहे हो, इससे अच्छा है रावण की सेना में ज्वाइन कर लो, सोने की लंका है, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, ये सब हुआ होगा 100% वही था। अंगद को क्या कहा रावण ने, यही चीज है ना सांकेतिक रूप में, ये सांकेतिक स्टोरी है। अंगद को रावण कहते हैं कि अरे तू क्यों उधर से लड़ रहा है, असुर को ज्यादा पता है संभावना, जानबूझ के तोड़ रहा है, उसको पता है कि जीत किसकी होने वाली है, कहते तू वहां से क्यों लड़ रहा है, इन्होंने तो तेरे पिता को मारा था। देखिए तोड़ने का प्रयास करता है, हम लोगों के अंदर भी बार बार अंधकार बोलेगा, तोड़ने का प्रयास करेगा, ये क्या दिन भर इसमें कुछ नहीं लगा है, देखो एक क्विक निर्वाणा का टिकट दिला देता हूं तुम्हें और सब जीवन का सब कुछ अच्छा होने लगेगा। कौन से जीवन का, वही बाहरी जीवन का, लेकिन यहां पर कुछ और है, और वह उसका आश्वासन कहां से आता है, इसकी सियोरिटी गारंटी, अक्सर लोग बोलते हैं ना गारंटी क्या है कि आदमी सक्सीड करेगा योग यात्रा में, तो क्या कहना चाहिए, गारंटी वो है। उनके लिए कोई चीज असंभव है, अगर इसको देखोगे तो गारंटी नहीं है। बंदर के वो की सेना लेकर भगवान लड़ जाते बंदर का कल्याण करने के लिए, पर उनको वहां से गारंटी नहीं थी। माता जी से किसी ने पूछा, मदर व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आपसे हमें क्या अपेक्षा कर सकते हैं, मां कहती है एवरीथिंग, मां आपकी हमसे क्या अपेक्षा है, मां कहती कुछ नहीं, नथिंग नथिंग, एक शब्द में। फिर साधक को लगा शायद गलत सुना, तो उसने घुमा फिरा के वही प्रश्न, मनुष्य की होती ना बुद्धि, तो कहते हैं नहीं नहीं माँ आप ऐसा बताओ कि मनुष्य से जो आपकी अपेक्षा थी वो मनुष्य पूरा कर पा रहा है कि नहीं। अब देखिए उसी बात को गोलमोल करके, तो माँ कहती चूंकि मेरी कोई अपेक्षा नहीं है मनुष्य से, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती। भगवान ने हम सबों की जो भीड़ इकट्ठी की है वो अपने बलबूते की है। All can be done if the God touch is there. ये एक छोटी सी भूमिका, सावित्री की यही समस्या, आगे बढ़ने का मन नहीं करता है, मन करता है इसी कैंटो में बहते जाएं, आगे थोड़ा सा और पढ़ लें 10 मिनट, ठीक है ना, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे। तो ये तो भगवान की ओर से कर्म, अंधकार में आते हैं, टच करते हैं, जगाते हैं, पर प्रत्युत्तर में मनुष्य के अंदर, सृष्टि के अंदर क्या होता है, सृष्टि का प्रत्युत्तर कुछ और होता है, और वो उत्तर भी यहां पर श्री अरविंद लिखते हैं पेज 7 पर कि मां क्या लाती है हम सबके लिए और पृथ्वी के अंदर से क्या उत्तर मिलता है। She had brought with her into the human form the calm delight that weds one soul to all, the key to the flaming doors of ecstasy. अपने साथ लेके आई, भगवान जैसे होते हैं ना हमारे यहां की, जब लड़की के यहां जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, तो पृथ्वी कौन है, उनकी बेटी है, सबसे प्रिय बेटी है, बाकी सब देवियों ने तो पास में रहना स्वीकार किया इसलिए वो देवियां हैं। पृथ्वी ने कहा नहीं मैं आपका काम करूंगी पापा, मुझे आप भेज दो मेरे अपने से दूर, वहां करूंगी आपका काम। तो अर्थ गॉडेस, इसीलिए पृथ्वी की पुकार पर फट से आ जाते हैं भगवान, शरीर धारण करते, क्योंकि वो बड़ी प्रिय उनकी बेटी है। अब जब पृथ्वी के घर आएंगे बेटी के यहां, तो कुछ गिफ्ट्स लेके आएंगे। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं श्री अरविंद आश्रम में क्या है, क्या करते हैं वो समाज के लिए, मनुष्य के लिए? अस्पताल चलाते हैं कोई फ्री? नहीं। फ्री लंगर है? नहीं। 20 रुपया है लेकिन डाइनिंग रूम टोकन है, चाहे बहुत कम है, 20 रुपए डाइनिंग रूम टोकन लेना पड़ेगा आपको। कुछ कपड़े उपड़े तो मिलते होंगे फ्री में? नहीं नहीं, आप गेस्ट हाउस में ठहरेंगे उसमें भी आपको फिक्स्ड रेट से, उसके अनुसार अपने अपने अनुसार आप ठहर जाए, तो फिर क्या फायदा? हम ये सब चीजें वास्तव में लेने के लिए पांडिचेरी जाने की क्या जरूरत है? पांडिचेरी तो आदमी जाता है, माता जी के आश्रम जाता है या यहां पर आता है, उस आनंद और शांति को पाने के लिए जो कहीं नहीं मिलते, और उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वास्तव में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो लेकर के आती क्या? की टू द फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटेसी। खोल ले, जितना आनंद तू समेट सकता है समेट, तेरी ये छोटा है तो छोटे इतना ही आनंद लेके जाएगा, अपने अंदर विशालता ले आया है तो और आनंद लेगा, सर्वांगीण समर्पण है तो तेरा देह तक आनंद से भर जाएगी, क्योंकि भगवान के देने की कोई सीमा नहीं है। तो वो क्या लेके आई थी? ये। लेकिन वो गिफ्ट बड़ा भारी पड़ता है मनुष्य पर, और साथ में रिटर्न भी कुछ देते हैं। बेटी से कोई अपेक्षा नहीं होती है माता पिता की, लेकिन बेटी कहती है ना कि नहीं नहीं आप आए हो तो मैं आपको भोजन तो कराऊंगी, भोजन करो, तो भोजन करेंगे, पर भोजन करने के पहले गिफ्ट लाते हैं ना, यही प्रथा है। अब सोचिए कि पिता आ रहा है कहां से, स्वर्ग का भोज जो करता है, अब बेटी क्या बनाएगी? धरती का भोजन। स्वर्ग के जो जीव हैं उनके लिए धरती का भोजन विषयुक्त है, उसमें केवल नमक मिर्च नहीं होता, उसमें हमारी पीड़ा, हमारा दुख, हमारा असंतोष सब उसमें मिला होता है, और भगवान उसको खाते हैं। यही ना सबरी के बेर आधा छूटा, वो स्वीकार करते हैं। तो यहां पर उसका वर्णन है कि पृथ्वी क्या देती है, क्या देती है? हर पैशन ऑफर्ड टू द डॉटर ऑफ इंफिनिटी, हर पैशन फ्लावर ऑफ लव एंड डूम शी गेव। भोजन दिया पृथ्वी ने भी कि मां तुम आई हो, मेरा भोजन स्वीकार करो, लव से प्यार से बनाया, उसमें क्या मिला था? डूम, जो सब समय उसने अनुभव किया है, पृथ्वी ने अपने एक एक कण में बार बार इसका अनुभव किया है, वो ऑफर करती है। बदले में मां क्या देती हैं? हर सेल्फ एंड ऑल शी वाज, शी हैड लेंट टू मेन, होपिंग हर ग्रेटर बींग टू इम्प्लांट दैट हेवन माइट नेटिव ग्रो ऑन मॉर्टल सॉइल। सब ला करके वो दे देती हैं अच्छे अच्छे गिफ्ट, स्वर्ग के पौधे, पारिजात, कि इसको अपने बगीचे में लगा ले, रात भी खुशबू से भरी रहेगी। होता है ना एस्पिरेशन ट्री की विशेषता, आप देखेंगे कि रात को उसके फूल झड़ते हैं। श्री कृष्ण लाए थे ना एस्पिरेशन ट्री स्वर्ग से, तो वो लेकर के आती हैं। अब कई बार आप देखेंगे कि सुंदर सुंदर पौधे आते हैं और मनुष्य क्या करता है उसका, कोई पौधे लाया, फूल लाया, गिफ्ट में फूल लाते हैं ना, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक फट से उसका वैल्यू करके डाल देते हैं जल में, कुछ होते लेके किनारे रख दिया, तो वो क्या हुआ? गिफ्ट का अपमान हुआ, उस चीज का अपमान हुआ। तो मां लाई अपने पूरे बींग को देने के लिए, परंतु हमारी ओर से स्वर्ग के पौधे लाई, हेवन माइट नेटिव ग्रो ऑन ह्यूमन सॉइल, और वहां रुकी ताकि उसको एटमॉस्फियर मिल सके, पर मनुष्य की ओर से मॉर्टेलिटी बियर्स इल द इटर्नल टच, इट फियर्स द प्योर डिवाइन इनटॉलरेंस ऑफ दैट असॉल्ट ऑफ ईथर एंड ऑफ फायर, इन्फ्लिक्टिंग ऑन द हाइट्स द एबिजम्स लॉ, इट सलीज विद इट्स मायर हेवन्स मैसेंजर्स, इट्स थॉर्न्स ऑफ फॉलन नेचर आर द डिफेंस, इट टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस, इट मीट्स द सन्स ऑफ गॉड विद डेथ एंड पेन। क्राइस्ट आते हैं धरती पर स्वर्ग उतारने। मनुष्य क्या करता है, क्रूसीफाई कर देता है। ना केवल क्रूसीफाई करता है, क्रूसीफाई करने के बाद उन्हीं की मृत देह पर चर्च बना लेता है ताकि लाभ उसको हो। श्री राम आते हैं राम राज्य स्थापना करने, मनुष्यों को राक्षसों से मुक्त करते हैं। कितना भयानक सब चल रहा था, जिसके लिए साक्षात जगत जननी मां राक्षसों के गढ़ में चली जाती कि जब मैं जाऊंगी तभी विस्फोट होगा और सब नष्ट होंगे। मनुष्य क्या करता है, ये राक्षसों के पास रही थी, सच में क्या इनके अंदर पवित्रता है, राम को ही सीता से अलग कर देता है। श्री कृष्ण आते हैं फिर से एक बार सारी भूमि से उन क्षत्रियों का नाश करते हैं जिन्होंने अपने अहंकार के लिए जी रहे थे। द्वारका स्थापित करते हैं जो धरती के तत्वों से नहीं स्वर्ग के तत्वों से बनी है। और यादव वंश क्या करता है, हम हैं, कृष्ण कौन है, जो तो यदुवंशी हैं, असली चीज तो यदुवंश की है, और आपस में ही लड़ कट के मर जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारका डुबो देते हैं। श्री अरविंद कहते हैं हर बार जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं वो क्या लेकर आते हैं और मनुष्य क्या देता है, क्या करता है, यही कहानी है। केवल इतना अंतर है कि मां श्री अरविंद ये नहीं चाहते कि यही कहानी फिर से इस बार दोहराई जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, कैसे उन्होंने इस बार फुल प्रूफ कार्य करने की पूरी चेष्टा की है और एक फुल प्रूफ काम किया है, उसकी बात हम लोग ब्रेक के बाद करेंगे। हाँ,
जो डूम पृथ्वी में जो डूम है उसको खत्म करने के लिए माता ईश्वर का वो हुआ, तो डूम प्रकट कहाँ से हुआ पृथ्वी में, जो
वो निश्चेतना चिपकी रही, छोड़ा ही नहीं उसने, उसके अंदर ये स्वाभाविक वृत्ति है हर चीज को निगल जाने की, उसकी यही वृत्ति है। तो कोई भी क्रिएशन होती है वो उसको खींचता रहता है अपनी ओर और अल्टीमेटली उसको निकल लेता है। इसको आप देखो जो सिविलाइजेशंस हुए, अब खंडहर होते हैं ना, आप जब पुरातत्ववेता उसमें नीचे जाते हैं तो कहते हैं अच्छा यहां पर इसके अवशेष मिले। अब कभी सोचिए आप कि आज से हजारों वर्ष पूर्व ये जो भवन बने थे ये इतना नीचे कैसे धस गए। नॉर्मल कोर्स में होता है कि खंडर होंगे वो यहीं पर होंगे, नीचे कैसे जाते हैं, यही सेम प्रक्रिया होती है, वो खींच खींच के अल्टीमेटली वो टूटते हैं और टूट करके वो धीरे धीरे इसके ऊपर लेयर्स आफ्टर लेयर्स फिर से ढक देता है। लेकिन उसके अवशेष, वो भी बात होती कि स्मृति दबी रहती है और वो स्मृति फिर से बाहर आती है। कौन जाने यहां पर भी कौन कौन से अवशेष और कौन कौन सी स्मृतियां दबी हुई। तो डूम का खेल चलता है परंतु भगवान चलने देते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपूर्ण था। तो भगवान ही स्वयं उसको स्वीकृति भी देते हैं, ये भी सच है, क्योंकि वो अपूर्ण था क्रिएशन। तो भगवान कहते ठीक है, डूम सोच रहा है मैं जीत रहा हूं, लेकिन भगवान को पता है कि ये तू भी मेरा काम कर रहा है, अपूर्ण को नष्ट कर रहा है, मैं फिर आऊंगा और अधिक पूर्ण बनाऊंगा। यही एक लाइन है, इसको पढ़ के हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, जिसमें लास्ट पार्ट है इस कैंटो का। सावित्री जब जागती है उस दिन तो वो क्या अनुभव करती है, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है। ऑल केम बैक टू हर, अर्थ एंड लव एंड डूम। अब देखिए ये बड़ी अद्भुत लाइन है, ऑल केम बैक टू हर। केम बैक कहां से, उनको तो रोज कोई प्रश्न हो सकता है ना, उनको तो पता ही था एक वर्ष से ये होना है, तो कहां से वापस आया, क्या वो भूल गई थी इस बात को। तो यहां पर देखिए सब कैपिटल में the ancient disputants, ancient प्रेम प्रकट करना चाह रहा है भागवत लीला को और डूम नष्ट करना चाह रहा है। encircled her like giant figures wrestling in the night, the godheads from the dim inconscient bond, जिसकी जो बात हो रही थी, evoke to struggle and the pang divine, and in the shadow of her flaming heart, एट द सॉम्बर सेंटर ऑफ द डायर डिबेट ए गार्जियन ऑफ द अनकंसोल्ड एबिस इनहेरिटिंग द लॉन्ग एगोनी ऑफ द ग्लोब. तो ये डूम का वर्णन है इनकॉन्शियंट का. वो प्रकट होता है उनके सामने और कहता है तुम कौन हो, मैं यहां पर भूमि पूजन करने आई हूं. सावित्री कहती है क्यों यहां देव मंदिर बनाना है, तो भूमि पूजन के पहले जो वहां पहले से देवता हैं आपको उनको करना है ना, कुछ देना है, नहीं तो वो कैसे भूमि दे देंगे, अब तक उनके अधिकार में है. तो इनकॉन्शियंट का देवता प्रकट होता है, कहता है ठीक है क्या सेक्रीफाइस तुम दोगी यहां पर, मैं कैसे दूं. तो वो क्या कहती है, The daily oblation of her unwept tears, all the fierce question of man's hours relived, the sacrifice of suffering and desire, earth offers to the immortal ecstasy, began again beneath the eternal hand. ये रामायण में आता है ना, ये प्रश्न कोई कर सकता है कि इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी. श्री राम तो सक्षम थे और रावण बदमाश था, ये सीता हरण की क्या आवश्यकता थी. सीधा जाते कहते रावण तुमने बहुत त्रस्त कर दिया सबको, अब मैं तुम्हारी लंका को ढा दूंगा, और वो कर सकते थे. तो ये सीता हरण और उसके बाद ये पेन, ये देखिए कितना अद्भुत लिंक है. वो एक्सट्रैक्ट करती है इनकॉन्शियंट जो कुछ था उसको स्वीकृति मिली थी डिवाइन से, तो वो कहता है ऐसे नहीं मैं दूंगा. तो भगवान उस ये लॉ ऑफ सेक्रीफाइस है, कहते हैं ठीक है पृथ्वी टैक्स दे रही थी नहीं दे पा रही है, रात रास्ता नहीं देती पृथ्वी को. वो कहती है नहीं तुमने ये नियम बनाया है सेक्रीफाइस का, रात्रि कहती है पृथ्वी से नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए इसको टैक्स देना है. गाड़ी में आप जा रहे हैं टोल टैक्स आ गया, तो अब ये थोड़ी कि आप टैक्स मारपीट करके तोड़ देंगे जैसे गुंडे लोग करते हैं. तो आपके पास जेब में पैसे जितना दे सकते थे आपने दे दिया, अब आपके पास पैसे नहीं है. वो कहता है नहीं हम आगे नहीं जाने देंगे. तो अचानक बैक सीट में भगवान बैठे हुए हैं, कहते ठहर पीछे मत लौट मैं दूंगा. तो आपके बदले में भगवान जो टैक्स देते हैं, रावण ऐसे रास्ता नहीं देगा, आपको वो सेक्रीफाइस करनी है. कौन करेगा वो बिहाफ पर अर्थ के, तो श्री राम स्वयं अपने ऊपर लेते हैं, चलो मैं उस पीड़ा को सहूंगा जो मनुष्य सहता है. ये सेक्रीफाइस ऑफ सफरिंग एंड डिजायर. श्री अरविंद माता जी वो पीड़ा अपने अंदर लेते हैं ताकि उनके बच्चों के लिए रास्ता आसान हो सके. ये एक बड़ा ही ऑकल्ट लॉ है, इसकी बात सावित्री में जगह जगह पर आती है. हम लोग यहां रुकेंगे और फिर इसके आगे बढ़ेंगे.